आए हम खुद को बदल ले, जग बदलता जाएगा अपने परिवर्तन से ही, परिवर्तन जगत
ओम शांति। आज का विषय है कि स्व परिवर्तन, और बाबा ने खास सबसे पहले मुरली में भी यही अंडरलाइन किया है, सिर्फ परिवर्तन नहीं तो कभी कभी शब्द था परिवर्तन होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक शब्द उसके पहले लगाना चाहिए, वो क्या है? स्व परिवर्तन। लेकिन हमको जब ये सुना अगले साल भी, तो ऐसे विचार आया कि बाबा ने ये ब्राह्मण बच्चों को बताया है, जो बाबा के बच्चे मुरली सुनते हैं रोज, योग करते हैं, धारणा पर चलते हैं, हर एक अपनी योग्यता के अनुसार, अपने जितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, हर एक की अपनी अपनी योग्यता है, लक्ष्य भी है, उस अनुसार हमको लगा हर एक अपना स्व परिवर्तन में लगा हुआ है, हर एक पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा नहीं कि आज काज होना चाहिए, हाँ तो कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन ठीक है, इसके लिए हो जाएगा समय पर, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ऐसा लगा स्व परिवर्तन के साथ साथ दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं। किसी पर अगर हमारी नजर गई, इनको ऐसा नहीं चलना चाहिए, इनको ऐसे चलना चाहिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, ये परिवर्तन, दूसरों का परिवर्तन संभव है। स्व परिवर्तन अपना, जितने आपने ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है, योग के अंदर बुद्धि की जितनी एकाग्रता है, स्वच्छता है, योग बल है, उस आधार से अपने ऊपर आप प्रयोग करते हो और चल रहे हो, ज्ञान भी, अगर कोई ज्ञान सुनता ही नहीं, योग करता ही नहीं है, धारणा पर नहीं चलता है, तो उसको कहना पड़ेगा बार बार। तो बाबा के बच्चे, मुझे लगता है जो भी अपनी यथा योग के अनुसार योग करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, धारणा पर भी चलते हैं, स्व परिवर्तन के जो पुरुषार्थ है उस पर लगे हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन दूसरों का जो हम परिवर्तन चाहते हैं, किसी पर नजर जाते ही इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये संभव है? ये तो संभव नहीं है, लेकिन चाहते तो जरूर है दूसरों का परिवर्तन। तो दूसरों का परिवर्तन तो उसका हरेक को अपना अपना पार्ट है, और वो भी अच्छी तरह से जानते हो, ड्रामा है ये, उस अनुसार जो अपना पार्ट जो उसको मिला है वो अपना पार्ट बजाएगा, लेकिन उसको देखकर हम एडजस्ट नहीं हो पाते, हमको लगता नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इसके अंदर परिवर्तन चाहिए। अगर ये हमने एक बात अगर समझ लिया, जो बाबा कहता है कि हमारे योग के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा ने कहा विकल्प से भी अभी थोड़ा दूर हो गए, लेकिन व्यर्थ बहुत चलता है, क्यों? कि इसके कारण हमारे जब भी किसी के ऊपर नजर पड़ी, कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, नजर पड़ते ही तो विचार मन में चलते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है और अंदर चलता है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं भी जाओ आप, सही है ये, ऐसा ही है, स्व परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं। तो लगा तो वो तो संभव ही नहीं है, है ना? आप कितना भी उसके लिए विचार करो, मनन चिंतन करो, सोचो, व्यर्थ क्या है? व्यर्थ इसमें जाता है, औरों के प्रति हमारे तर विचार चलते बहुत। तो देखा, तब कहा, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि शांति चाहिए। शांति क्या है? प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेजेस कॉल्ड साइलेंस। संसार में चलते हुए देखते हुए सुनते हुए भी अगर हमारे पर औरों का प्रभाव पड़ता है, हम प्रभावित होते हैं। जब भी आप योग में बैठो, मुरली सुनने बैठो, तो पहले से कोई बैठा हुआ है तो दूसरा कैसे बैठेगा? पहले से हमारे मन में औरों का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, तो उसका चिंतन चलता है। तो अभी जो मुरली सुन रहे हो या कुछ ज्ञान सुनते हो तो वो अंदर कैसे घुसेगा? क्योंकि साइंस में कहते हैं टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, दो काम नहीं हो सकता है, एक होगा, है ना? तो एक अंदर चल रहा है। तो इसके कारण देखा गया ज्ञान सुनते हुए भी धारणा नहीं होती, याद नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं आप में से कोई कहेगा भाई साहब हमको तो यादाश्त शक्ति नहीं हमारी, ऐसे है? यादाश्त शक्ति कम हो जाती है तो कहां से ला करके दे दिया जाए? जैसे भक्ति में कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, तो भगवान के पास बुद्धि है, कोई आएगा तो दे देगा, ऐसा है? नहीं। वो भी देख लो आप, अगर आज मैं एक गलत शब्द कुछ बोलूं और 10 साल के बाद मिलूं तो वो शब्द भूल जाएंगे? अच्छी तरह से याद रहेगा, कभी भी भूलेंगे भी नहीं। अर्थात हमारे पास यादाश्त शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन किसके लिए है? नेगेटिव व्यर्थ बातों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो पॉजिटिव अच्छे ज्ञान के महावाक्य है वो धारण नहीं होते। अर्थात बुद्धि स्वच्छ नहीं है, बुद्धि है लेकिन वो स्वच्छ न होने के कारण अच्छे अच्छे ज्ञान रतन धारण नहीं होते हैं। तब बाबा ने बहुत दफा कहा कि ये ज्ञान रतन धारण करने के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ बुद्धि चाहिए। अगर बर्तन स्वच्छ नहीं है, कितना भी आप सुन लो, कभी कभी कोई कहते हैं हम दिन में 2-3 दफा मुरली पढ़ते हैं, 4 दफा मुरली पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते जरूर, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन अंदर धारण नहीं होता, याद नहीं रहता है, कारण बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तो बुद्धि स्वच्छ क्यों नहीं है? मन का प्रभाव पड़ता है। मन देखो, आप भी साधारण अपने आप को देख लो, चेकिंग करो, रास्ते पर चलते हो, किसी पर भी नजर पड़ी, आंखें तो खुली, आंखें बंद तो नहीं करेंगे, देखते ही देखना किसी पर पड़ते ही अंदर क्या चलता है। बाबा ने तो हमको काम दिया है, बच्चे संसार में चलते आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे, देखना जरूर है, अच्छी तरह से देखना है, लेकिन देखते हुए कुछ लेना नहीं है लेकिन कुछ देना है। दाता के बच्चे हो हम, कौन है? दाता के बच्चे, देना सीखना है। किसी पर नजर पड़ते हमारे मन में औरों के लिए कुछ मिलना चाहिए, वो अभी होता नहीं है। अभी क्या हो रहा है? हमारे मन की रिसीवर है। आप कहेंगे ना हम लेते हैं ना हम देते भी नहीं किसी को, न्यूट्रल, लेकिन नहीं हो सकता है। मन की एक ऐसी आदत है वो जरूर ग्रहण करता है, प्रभावित होता है। तो वातावरण के अंदर किसी पर नजर पड़े, किसी को देखते ही हम सारे दिन में व्यर्थ नेगेटिव बातों के प्रभाव में आते हैं। उसके कारण जब ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान ठहरता नहीं है। योग में बैठो तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, नहीं तो इतना सहज है जैसे आप शांतिवन में आए, कुछ काम नहीं है और फ्री है, खाली आए किसके लिए? कुछ लक्ष्य लेके आए कि हमें बाबा से मिलना है, और किसी से नहीं मिलना है, भगवान से मिलना है। तो उसकी तैयारी करेंगे ना, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, ऐसे अपने आप तो नहीं होगा। तो आने के बाद जो अपना लक्ष्य लेके आता है तो कुछ नहीं, कहीं भी नहीं जाता है, घूमने के लिए तो नहीं आए, तो आए अपना लक्ष्य लेके बैठता है, पढ़ाई करता है, बुद्धि को स्वच्छ रखता है कि इस बुद्धि नेत्र के द्वारा भगवान जब आता है, बाबा आता है, जो है जैसा है दृष्टि देता है, वाइब्रेशन देता है, उसको कैच करना चाहिए। कुछ लक्ष्य लेके आए, कुछ पर्पस से आए हैं, ऐसे नहीं चलो ऐसे देख के आएंगे, ऐसा तो नहीं है, है ना? हरेक के अंदर है, कभी पूछे, सिर्फ जो हमारा लक्ष्य था आने से पहले, टिकट बुकिंग करने से पहले या था, लेकिन यहां आने के बाद तो वो भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का संग मिलता है, तो उस संग के अंदर औरों को देखते हो तो अपना लक्ष्य कभी कभी, ऐसा नहीं सभी का नहीं है, थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए ध्यान चाहिए कि अभी बाबा कल परसों आएगा, आपके पास समय है तो ज्यादा करके 2 दिन कहीं न जाने ना लाने चाहिए, बाबा के बाद मिलने के बाद ऐसे भी नहीं घूमना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, बात भी नहीं करना चाहिए। हाँ, परिवार आया है, मिलना चाहिए, लेकिन उसके पहले जिस लक्ष्य आए हम तो उसकी प्राप्ति भी करनी चाहिए। तो इसलिए देखा कि परिवर्तन अगर करना चाहिए तो बाबा की शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा ने कल या परसों मुरली में सुनाया था, कल ही साकार मुरली में, बच्चे ज्ञान कितना भी सुनो आप, ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा। दुनिया में भी कहते हैं नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, है ना, जो समझते हैं उससे नहीं, उसके बाद ज्ञान को धारण करना है। अब प्रश्न आता है, कभी कभी बात निकलती है कि हमें संस्कारों को परिवर्तन करना चाहिए। सारा दिन आप योग में बैठ जाओ तो संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे? बहुत योग किया है, योग की शक्ति तो प्राप्त हुई है, चलो ज्ञान भी है, बहुत ज्ञान सुन लिया है, बहुत क्लासेस सुने, बहुत मुरली सुनी, नोट किया पॉइंट्स, ज्ञान भी है। जैसे कोई दुनिया में कहते हैं कोई अगर व्यक्ति बीमार है, बहुत प्रकार की दवाई अपने पास रख दो, होम्योपैथिक भी रख दो, एलोपैथिक भी रख दो, सभी प्रकार की दवाई रख दो तो बीमारी ठीक हो जाएंगी? पूछेंगे हमारे भी, हमको बीमारी है, सब दवाई हमारे पास है, तो दवाई रखने से ठीक नहीं होना, एप्लीकेशन चाहिए, दवाई लगानी पड़ेगी, दवाई समय पर और जिस विधि से डॉक्टर ने कहा है उस विधि से उस समय पर। नहीं सभी भूल गए सवेरे शाम का तीनों गोली एट ए टाइम ले लो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना, नहीं, हैवी डोज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो हर चीज का नियम है, तो उस नियम अनुसार उसी समय अनुसार अगर उसका उपयोग करते हो तो सिद्धि प्राप्ति दिखाई देती है, परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में भी एक महावाक्य है, वर्षन है, कहते हैं आप भी सोच लेना इसको अच्छी तरह से। तो बहुत साल पहले हमने इसके ऊपर सोचा कि दुनिया में कहते हैं महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है, आफ्टर रियलाइजेशन देर विल बी ए चेंज। ठीक है, ये बहुत पुराना है और बहुत पॉपुलर भी है ये वर्षन, तो ये सही है, महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। देखो आप कितने ज्ञान सुनते हो, योग भी करते हो, देख उदाहरण देख लो, रास्ते पर चलते हम कभी एक्सीडेंट देख लेते, गाड़ी चलाने वाला देखता है एक्सीडेंट हुआ, अपने आंखों से देखता है और उसी समय मन में प्रतिज्ञा करता है, महसूस करता है, पूरी अच्छी तरह से महसूस करता है, आज के बाद हमें इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कि उसने देखा, फैक्ट है, सुनी हुई बात नहीं है, पढ़ी हुई बात नहीं, इट इज अ फैक्ट। लेकिन देखने के बाद कल अगर उसको ऑफिस में जाना है या स्टेशन पर ट्रेन पकड़नी है, लेट हो गया तो क्या करता है? हाँ, जो कल प्रतिज्ञा किया था, कल महसूस किया, वो कल हो गया। आज जो पुराने संस्कार आदत थी वो आज भी वही चलती है। तो देखा गया महसूस करने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर और दो बातें हैं, दो शब्द मिस हुए हैं। अगर दो शब्द ऐड करो तो महसूस करने के बाद परिवर्तन दिखाई देगा। उसका जवाब मैंने पहले सुना दिया, पहले जवाब सुना दिया, फिर यह बताया कि महसूस करने के बाद हमको और क्या करना चाहिए। तो परिवर्तन दिखाई दे जाए तो महसूस करने के बाद, कभी कभी हम दिन रात मेहनत करते हैं कि ये परिवर्तन करना चाहिए, संस्कार को, गुस्से को परिवर्तन करना चाहिए, जीतना चाहिए, तो उसके बाद दिन रात आप योग करते रहो, दिन रात पढ़ते रहो तो परिवर्तन होगा? नहीं, मेहनत ही सब कुछ नहीं है, लेबर हो गया। लेकिन उसके साथ और एक शब्द चाहिए कि विधि पूर्वक अभ्यास ही परिवर्तन दिखाई देगा। महसूस करने के बाद अगर विधि पूर्वक अभ्यास नहीं किया है, कभी कभी अभ्यास हो रहा है, विधि नहीं है। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे कागज को आप देख लो, सूर्य की किरणों के नीचे रख दो, 10 साल रख दो, नहीं चलता है। लेकिन आप कहेंगे लेंस पकड़ने से जलेगा, लेंस भी पकड़ो अगर हाथ हिलता है तो नहीं जलेगा। तो एकाग्रता चाहिए, स्थिर चाहिए हाथ, तब सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होगा। ऐसे यहां भी कि हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है उसको भी परिवर्तन करने के लिए बहुत ज्ञान इंफॉर्मेशन समझ इकट्ठा कर लिया आपने, लेकिन उसका प्रयोग करना चाहिए, दवाई बहुत कुछ ला के रख दिया है, उसको लगाना पड़ता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान और योग का प्रयोग अपने संस्कारों पर करो, तब जाके वो परिवर्तन होगा। उदाहरण देख लो, हमें बचपन से आदत थी कि बहुत आइसक्रीम खाते थे, अभी भी देखता, अभी ज्ञान सुनने के बाद बाबा ने कहा बच्चे बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए, मक्खी बैठती है, देखो ठीक नहीं है। हाँ महसूस भी होता है, ठीक भी नहीं है, चाहते भी नहीं है, लेकिन जो आइसक्रीम बेचने वाला वो वहां ही है, उसको देखते ही मन में संकल्प आता है। अगर बुद्धि जागृत नहीं है, सवेरे योग नहीं किया है, न योग की शक्ति और ज्ञान की शक्ति दोनों नहीं है, कम है, तो संस्कार के वशीभूत हो जाते। हम चारों तरफ देखते हैं, आज कोई नहीं दिखाई देता है, चलो आज खा लेंगे, कल से नहीं खाएंगे, है ना। तो संस्कार भी कम नहीं है, शक्तिशाली है, उसके प्रभाव में आते हैं, फिर महसूस होता है अरे क्या किया। तो इसके लिए अगर क्या है, संकल्प आएगा, संकल्प नहीं आएगा ऐसा नहीं, आते अगर बुद्धि जागृत है, बुद्धि शक्तिशाली है, समझदार है, तो मन को समझाती है, संस्कारों के ऊपर प्रयोग करते हो, नहीं आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, खाने से क्या होगा, उससे नुकसान क्या है, फायदे क्या है, तो सोचता है, समझाता है अपने आप को, समझा करके जागृत होने का जो फोर्स होता है संस्कार, वो वीक होता जाता है। सिर्फ एक दिन नहीं, कल दोबारा देखते दोबारा संकल्प संस्कार जागृत होगा, दोबारा उसको समझाना है, परसों फिर देखने का फिर आएगा। अगर दो चार दफा बार बार उस संस्कार को समझाते हो तो संस्कार को हम जागृत होने का फोर्स है, क्योंकि हमने बहुत दफा कर्म किया हुआ है, उस संस्कार के पीछे फोर्स है, शक्ति है, शक्तिशाली संकल्प संस्कार कहते हैं हम। तो वो जब जागृत होता है उतने स्पीड से फोर्स से जागृत होता है, तो उसको रोज अगर आप समझाते जाएंगे तो धीरे धीरे संस्कार शक्तिहीन होता है, वीक पड़ जाता है। जो जागृत होने का फोर्स है वो फोर्स कम होता जाएगा, लेकिन एक दिन नहीं। तब बाबा ने कहा बच्चे रोज योग करना जरूरी है, नहीं कल किया था, रोज योग की शक्ति चाहिए, कौन समझाएगा। आप पूछेंगे ज्ञान तो सुना है तो योग क्यों चाहिए, तो योग भी हमारी विधि है। रोज बाबा सुना, ऐसे नहीं, दुनिया में बहुत प्रकार के योग है, सारी दुनिया के अंदर हरेक व्यक्ति योग करता है अपने अपने विधि से, लेकिन यहां बाबा ने योग के लिए बाबा की याद करने की विधि बताई है, और उस विधि पूर्वक करने से सिद्धि प्राप्त होंगी कहा। तो विधि क्या, जब भी योग में बैठो पहले अपने को आत्मा समझो, सिर्फ मैं आत्मा हूं इतना नहीं, उसकी भी विधि है, आत्मा कैसे समझना है। जब तक आत्मिक स्मृति जागृत नहीं है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हम कैच नहीं कर सकते हैं। उदाहरण बताते हैं, कभी जैसे आप रेडियो ऑन करो, रेडियो ऑन करते ही आपको बीबीसी न्यूज नहीं सुनाई देंगी, आप कहेंगे रेडियो ऑन किया है, रेडियो के बाहर बीबीसी के भी वाइब्रेशंस है, दिल्ली स्टेशन के भी है, गुजरात के भी है, अंदर कौन घुसेगा, है ना, अंदर कौन से आवाज घुसेगा, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मीट कहते हैं। तो अगर दोनों एक जैसे, हम भी उसी स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसी प्रकार के पॉजिटिव वाइब्रेशंस अंदर घुसेंगे, नहीं तो दूसरे आवाज घुसेगा और किसी का संकल्प आएगा, चारों तरफ वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। तो इसलिए योग के लिए विधि भी है याद करने के लिए कि पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात मन और संस्कारों के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए, बुद्धि को फ्री करना चाहिए, नहीं तो बार बार मन के अंदर यहां योग के लिए बैठे और संकल्प दुनिया के आ रहे, अगर ये करना था, कल टिकट बुकिंग करना था, कल और कुछ करना था, तो बैठे किसके लिए। लेकिन मन भी ऐसी चीज नहीं तो आप हाथ पकड़ के एकदम दबा दो, दब जाएगा, बंद हो जाएगा, मन भी इतना सूक्ष्म है, पता ही नहीं चलता किसी को देखते कब संकल्प उठा, जब असंकल्प आने के बाद आपको पता चलता है, इतनी सूक्ष्म चीज है ये। इसलिए अभ्यास चाहिए, शरीर का पहले जब बैठते हो तो पहले देखना पड़ता है, तो उसकी विधि है। अगर विधि पूर्वक आप
थोड़ा सा ही करो, विधि पूर्वक अभ्यास करते हो तो महसूसता की जो शक्ति है, बुद्धि की जो स्वच्छता है वो बढ़ती है। और जितनी बुद्धि स्वच्छ है, जैसे आप मुरली सुनते हो तो समझ में आता है, हाँ ये बात ऐसी करनी चाहिए, ये बाबा ने जो बात सुनाई, महावाक्य सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, हमको इसको धारण करना चाहिए, इसको आचरण में लाना चाहिए, बुद्धि ग्रहण करती है, याद रहती है। फिर संसार में जब चलते हो, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी बात सामने आती है, तुरंत बुद्धि याद दिलाती है, बाबा ने कल कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल निकलना चाहिए, तब बुद्धि, क्यों, ये सारे शरीर के ऑर्गन्स को, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर कौन देता है कर्म करने के लिए? मैड व्यक्ति किसको कहते हैं, जो कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए उसको पता ही नहीं है कि बुद्धि काम नहीं करती है, है ना। जैसे बुद्धि, जब तक बुद्धि के अंदर, आप देख लो कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझ भी रहे, जब बाबा कहता है सुनने के बाद समझ में आया, कुछ सुन लिया, इसलिए कहा दुनिया में कि लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, श्रवण सब कुछ नहीं है, श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। अब मनन चिंतन क्या, सुनने के बाद, जैसे देखो उदाहरण भी देता है बाबा कभी कभी, गाय क्या करती है, खा करके एकांत में जाके बैठती है, फिर उगारती है, कुछ सुनने के बाद, मुरली सुनने के बाद हमको थोड़ा समय एकांत में बैठना चाहिए और घूमने जाना चाहिए, जो सुना वो बुद्धि को दोबारा समझाना चाहिए, सेल्फ कन्विंसिंग पावर चाहिए कि बाबा ने क्या कहा, इसको कैसे आचरण में लाना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए प्रबंध, ये सब खोलने के बाद, बुद्धि को समझाने के बाद, बुद्धि के अंदर धारण होता है, रिकॉर्ड हो जाता है, उसको आप कहते हैं सुनने के बाद मुझे आज बहुत अच्छा कन्विंस हो गया है, नहीं तो सुनते हैं सुनने के बाद कन्विंस नहीं हुआ है, स्वीकार नहीं है तो आचरण में नहीं आएगा। जितनी बुद्धि स्वच्छ होती है, जब स्वच्छ होने के बाद आपने मुरली सुन लिया, बैठ करके उसके अंदर रिकॉर्डिंग करना चाहिए, भरना चाहिए, जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम भरते हैं, तो हमें बैठ करके जो कोई भी एक महावाक्य ले लो, बहुत नहीं चाहिए, एक आज के मुरली से आपको एक महावाक्य जो भी अच्छा लगा, इसको मुझे आज अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ठीक है, आपके अधिकार है, आपको च्वाइस है, तो ले करके बैठो या घूमने जाओ, अपने आप से बात करो कि आज बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध नहीं करना चाहिए, हाँ करना नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाला ऐसा बोलता है तो हम चुप रहे, बुद्धि भी आपके जवाब देंगे ना, तो सुनो, फिर जवाब अंदर डायलॉग चलता है, वार्तालाप चलता है, तो बुद्धि कहेंगे अगर कोई कुछ बोले हम चुप रहे कुछ भी नहीं करे, नहीं, हाँ हम क्या करेंगे, हमको क्या करना चाहिए, हमने करने से क्या होगा, उससे फायदा क्या है, उससे नुकसान क्या है, जब ये सब वार्तालाप चलता है तो बुद्धि निर्णय में आती है, नहीं ये करने से ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, और हमको ये किसने कहा है, सुनाने वाला कौन, स्वयं भगवान ने हमको कहा, वो आदि मध्य अंत जानता है, और हमारा कौन, हमारा कल्याण करना चाहता है, तो उसने हमको जब कहा है तो उसके अंदर भी कुछ पावर कारण होगा। चलो हम गुस्सा भी कर लिया, किसको कुछ बोल दिया, क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो ये जब सब निर्णय करके बुद्धि कन्विंस हो जाती है अंदर विचार करने के बाद, तब बुद्धि निर्णय लेती है, हां ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, ऐसे करना चाहिए, तब ये आपके अंदर प्रोग्राम बुद्धि के अंदर भर गया। अब संसार में जब चलते हो, जब परिस्थिति आती है, तुरंत आपको पता भी नहीं होता है, बुद्धि अपने आप काम करती है, क्यों, बुद्धि के अंदर धारण हो गया है, बुद्धि ने निर्णय ले लिया है, अपने आप समय पर वो काम कर लेती है, तब आपको लगता है ये कैसा हो गया, कि कारण इसको कहते हैं, कभी बाबा मुरली में सुनाता है, बच्चे दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता इज व्हाट, बुद्धि को कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि इस सारे शरीर को, ऑर्गन्स को ऑर्डर देने वाले, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाले बुद्धि है, जब तक बुद्धि के अंदर अच्छी तरह से ज्ञान भरा नहीं है, इसलिए एकांत थोड़ा समय चाहिए। शांति से बैठकर अपने आप को समझाते हो, समझ में आता, हाँ ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, ये करने से इतना नुकसान है। कभी कभी कर्म करने से वर्तमान में फायदा दिखाई देता है, लेकिन भविष्य में एक का पदम गुना नुकसान होता है। कि हम तीनों कालों को जानते हैं, तो भविष्य को देखते हुए वर्तमान का कभी कभी त्याग करना पड़ता है। अलग काल की प्राप्ति दिखाई देती है, जैसे बहुत दफा उदाहरण बताया है, भूख लगी है तो सामने चीजें निकाल के खा लिया, लेकिन आज खाया कल वही आदत चोरी बन जाती है, आदत पड़े चोरी की आदत, बड़े होने के बाद भविष्य में उसका रूप बदल जाता है। वर्तमान में साधारण रूप से हम करते हैं, तो इसलिए कहीं कभी भी देखा गया कि वर्तमान को हम देखते हैं, भविष्य को देखना चाहिए। भविष्य में पद्मों के रूप में बहुत अनलिमिटेड रूप में नुकसान होता है, वर्तमान थोड़ा फायदा दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत दुरांदेश बुद्धि के अंदर ये दृष्टिकोण रहता है, तो भविष्य के लिए भी सोचता है। इसलिए मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी किसको कहेंगे आप, उसको भी तो भूख लगती है। मनुष्य प्राणी वो है कि सिर्फ वर्तमान देखता है, और मनुष्य वो है, देवताबाद में फरिश्ताबाद में मनुष्य वो है कि भविष्य को जानता है, वर्तमान के साथ कल क्या होगा भविष्य के लिए सोचता है। तो हमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों को समझ बाबा देता है कोई कर्म करने से पहले। तो ये बुद्धि के अंदर है समझ, जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर देखो दो बटन दबा देंगे तो प्ले भी होगा रिकॉर्डिंग भी होगा, अगर एक बटन दबा देंगे तो प्ले हो रहा है चल रहा है ना, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। अगर इरेज भी करना मिटाना भी चाहते हो कुछ तो भी दो बटन दबाना पड़ता है, एक बटाएंगे तो चल रहा है और दोबारा रिकॉर्डिंग भी रहेगा अंदर, मिटेगा नहीं। तो ऐसे यहां भी हमारे पास भी सिस्टम है कि दो बटन दबा, मन और बुद्धि। बुद्धि का काम है ग्रहण करना, तब उसके अंदर जब सुनने के मन श्रवण करता है, श्रवण करने के बाद उसके अंदर रिकॉर्डिंग चाहिए तो धारण हो जाती, याद रहता है, और याद भी इतना नहीं टेम्पररी याद रहता है कभी कभी, फिर उसको बैठ करके अपने पर और विस्तार करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसमें फायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते से चलना नहीं चाहिए, इनको देखेंगे तो ये विचार आएगा, तो कहीं पथ्य भी रखना पड़ता है। अगर कोई बीमारियों को प्राप्त करने दवाई लेने के बाद भी डाइट भी चाहिए, पथ्य भी रखना पड़ेगा, ये नहीं करना चाहिए, इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो ये सब बुद्धि के अंदर जब समझ आती है तो बुद्धि कंट्रोल करती है। नहीं तो हम सुनते हैं, नोट भी कर, देखा गया कि बहुत ज्ञान है, ऐसे नहीं किसी के पास ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसा नहीं, बहुत इंफॉर्मेशन है, नोट भी करते हैं, बहुत चौपड़े किताबें लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन की विधि नहीं जानते हैं। घर में जाओ आजकल एक एक के पास कितनी दवाई है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा मनुष्य कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए, तो लेकिन दवाई किस प्रकार लेना चाहिए, किस विधि से लेना चाहिए, अगर उस विधि से उसी समय वो दवाई काम करता। आप कहेंगे सवेरे बिजी थे, चलो सवेरे की दिन की दो तीनों गोली शाम को एट ए टाइम ले लेते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना, तो नहीं, तो उस समय उस दवाई की वैल्यू है, समय पर वो काम करती है। खाली पेट पर ये दवाई लेनी है, कहीं दवाई खाने के बाद लेनी है। तो ऐसे इसलिए कहा विधि पूर्वक और महसूस करने के बाद भी विधि पूर्वक अगर अभ्यास नहीं है, हमारे संस्कार पुराने आदतें अपने आप परिवर्तन नहीं होंगे। रियलाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है कि एक बार जब मुरली बाबा के सामने बैठे हो, मुरली सुनते हो, कभी किताब पढ़ते हो, कोई इंसिडेंट देखते हो अपने आंखों से, तो रियलाइज होता है अच्छी तरह से, दिल से आप महसूस भी करते हो, नहीं ऐसा नहीं कभी कहेंगे नहीं हमने थोड़ा रियलाइज किया, नहीं दिल से भी करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन उसका उपयोग प्रयोग जो करना है तो उसके लिए विधि चाहिए। इसलिए देखा गया बहुत दफा कि विधि पूर्वक योग में भी बैठो आप बैठते हैं, खास करके देखा रूरियान चलती है, योग में बैठते बाबा से बात करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा पहले अशरीरी बनो। अभी अशरीरी भी कहते हाँ मैं आत्मा हूं, पहला लेसन तो हमने करके अभी दसवीं लेसन पर पहुंच गए हैं, हाँ पहला लेसन तो हो गया समझ लिया, नहीं रोज बार बार हम शरीर के भान में आते हैं, बार बार इस शरीर को उपयोग करते हैं। जैसे आप देखो अगर इस स्टेज पर आपको चढ़ना है, दिन में 10 दफा चढ़ना है तो 10 ही दफा आप ये 10 स्टेप्स चढ़ के आना पड़ेगा ना। आप कहेंगे 10 दफा चढ़े हम पता है जानते हैं, अभी एकदम 10 कदम एकदम छलांग मार सकते हैं, हाँ मार सकते हैं, वो भी कैपेसिटी है, बाय चांस स्लिप हो गया तो सदा के लिए पाव टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए कहता है स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरता चाहिए, विधि पूर्वक सिस्टमेटिक अभ्यास कर, क्यों ये राज्यों का एक ऐसा है तो हमारे किसके लिए हम कर रहे, कुछ लक्ष्य है, हम किसके लिए कर रहे हैं ध्यान योग, किसके लिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसे बहुत जन्मों के संस्कार बने हुए हैं उसको परिवर्तन करना है, जो हमारे उन्नति के लिए एक विघ्न है, हमें आगे बढ़ना नहीं देता है। ज्ञान अच्छा लगता है, योग करना भी चाहते हैं हम, लेकिन योग में बैठ नहीं सकते हैं, मुरली सुनने के लिए बहुत दौड़ दौड़ के इच्छा से आते हैं, लक्ष्य भी है, यहां आके बैठते ही देखना नींद आ जाती है, क्यों सिर भारी है, सिर पर टोकरा रखा हुआ है तो कैसे भारी सिर कैसे खड़ा सीधा रहेगा, तो झुकेगा ना। तो इसलिए कहा कि बुद्धि फ्री इन्फ्लुएंस प्रूफ, इसके लिए भी बहुत सुंदर बहुत दफा अनुभव सुनाया, तरीके सुनाया है कि कैसे प्रभ संसार में चलते हुए सहज मेहनत भी नहीं। आप कहेंगे बहुत मेहनत करने से होगा ये, नहीं बाबा ने कहा मेहनत नहीं चाहिए, सहज संसार में चलते फिरते खाते पीते कई बातों का अगर आप अभ्यास करते हो और देख सकते हैं, एक दो दिन ही करो। कभी कभी हम देखते देखो एक गोली खाते ही पता चलता है थोड़ा परसेंटेज बीमारी ठीक हो गया है, विश्वास हो जाता है, क्यों कि देखा गया कि ज्ञान सुनने से भी अंदर जाता नहीं है, विश्वास के बिगर भी अंदर धारण नहीं होता है। जैसे देखो गीता में भी अर्जुन को कितना ज्ञान सुनाया, नहीं माना, विश्वास नहीं था कौन सुना रहा है, जब उसने देखा एक सुनाने वाला कौन, विश्वास हो गया, अपने गुरु पर भी बाण चलाना तैयार हो गया, है ना। तो यहां भी हम बहुत सुनते हैं, विश्वास नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं होता, धारण नहीं होता है। तो इसलिए अब एक कोई बहुत विधि सुनते रोज, इसने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, बाबा ने आज ये कहा, कल ये कहा, बहुत सुनते हैं, तू मैंने को बहुत प्रकार के एक बर्तन के अंदर बहुत प्रकार के खाना बनाओ तो क्या हो जाएगा, है ना। तो टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट कहते हैं, तो बहुत सुनने के बाद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, बाबा ने एक धारणा के लिए मुरली सुनने की विधि बताई है, कैसे सुनो, मुरली सुनने की विधि है, अपने आप एक बार सुन लिया याद नहीं रहता है, सुना सुनते सुनते जो आपके अच्छे पॉइंट्स ले गए आपको धारण करने के लिए वो नोट करो, 1 2 3 4 5 नोट करने के बाद फिर मुरली जब खत्म होती है तो एक बार देख करके रिवाइज करो, आज मुझे क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स इसके आचरण में, इसको आचरण में लाना चाहिए, रिवाइज करो बस। उसके बाद जब बाहर जाते हो, यहां से नाश्ते तक जाते हो तो उसी का चिंतन करो, नहीं तो बाहर जाते और इधर उधर की बातें करेंगे, यहां सुना उसके पर दूसरा फाइल आ गया, वो बात वहां रह गई, तो उसका भी रियलाइजेशन चाहिए, चिंतन चाहिए। थोड़ा समय करते हो तो भी थोड़ा समय याद रहेगा, लेकिन मुख से अगर आप किसी को आज के मुरली के पॉइंट 1-2 व्यक्ति को सुनाते हो तो देखो पक्का मेमोरी रह जाएंगी, याद रहेगा, 5-10 साल तक आपको याद रहेगा आज की मुरली। सुनना चाहिए, नोट करना चाहिए, नोट करने के बाद देख करके रिवाइज करना चाहिए। फिर सारे दिन में कर्म करते करते कोई भी मिला मुख से जरूर वर्णन करो, ये 4 बातें करो, देखना आप मुरली आपको सदा याद रहेंगे, आज के मुरली के पॉइंट। हर चीज की विधि है, आप कहेंगे सवेरे सुन लिया लिख दिया बस हो गया, 2 मिनट के बाद भी पूछो आधा शब्द याद रहेगा, आधा शब्द भूल जाएगा, कि हमारे अंदर इतनी ग्रहण करने की स्वच्छ बुद्धि नहीं है। एक बार सुन लिया, ग्रहण हो गया, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, बहुत जन्म लेके हम आए हैं, बुद्धि के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है, इतनी स्वच्छ नहीं है। तो इस विधि पूर्वक अगर आप सुनते हो ज्ञान भी, देखना कल से शुरू करके देख लो, यहां ही प्रयोग करके देख लो। अगर प्रयोग करने के बाद एक ही दिन करो तो एक दिन में आपको रिजल्ट पता चलता है 1%। हाँ, आज ऐसा किया उसके कारण देखो, आज सारा दिन मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान के पॉइंट्स याद रहा, तो विश्वास होता है। तो तब का वेर देर इज ए फेथ देर इज ए प्रोग्रेस, विश्वास है तो उन्नति है, विश्वास नहीं तो प्रोग्रेस नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है। तो जो सुना वो करते नहीं फिर, तो उसके कारण एक दफा करके, अगर इससे कुछ फायदा नहीं है, ऐसे नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही दवाई लेनी चाहिए, ठीक है, इस डॉक्टर की दवाई ठीक नहीं हुई है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं दवाई लेके लिया नहीं है, रख दिया जेब में और कहो ठीक नहीं हुआ है, नहीं, ये ठगी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गोली खा के देख लो, एक ही दिन करके देख लो, तो परसेंटेज पता चलता है कि थोड़ा सा फायदा है, विश्वास हो जाता है, तो हमें कल भी दवाई खानी चाहिए, तब रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसलिए कहा, कब सुनने के बाद हर चीज का प्रयोग करके देख लो, और जो प्रयोग से आपको लगता है कि स्वतंत्रता है हर एक को, इसलिए कहा स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बाय फोर्स बाय विल, स्व इच्छा से है ये। अब हम जो करेगा वो पाता है, अगर जिसको समझ में आया, जिसने किया उसके जीवन में है, जो सुनने के बाद समझने के बाद भी नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं। हर एक की अपनी स्वतंत्रता है, जबरदस्ती बिठाएंगे क्या कि आपको राजा बनना ही चाहिए, नहीं, हर एक की अपनी है। तो इसलिए अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए, ऐसे ही क्यों ज्ञान याद रह गया। अब है योग, बुद्धि को स्वच्छ करना चाहिए, तब तक सुनी हुई बातें बुद्धि के अंदर धारण नहीं होता है, परिवर्तन करने के लिए दोनों चाहिए। तो बुद्धि कैसे स्वच्छ हो जाएंगी, हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति कैसे होगी, अपने आप नहीं होगा। तो बुद्धि को, जैसे बुद्धि एक दर्पण है, अगर हवे के अंदर भी मट्टी है, डस्ट है, बुद्धि दर्पण के ऊपर बैठता है डस्ट, तो आप जाके देख लो तो दिखाई नहीं देता है, अगर एक कपड़ा घुमा दो तो स्पष्ट दिखाई देगा। तो ऐसे अमृत बाबा ने जो विधि बताई योग करने के लिए, जब अमृत वेले कभी भी आप योग में बैठते हो, सवेरे आधा घंटा या शाम को आधा घंटा, तो उसकी विधि है, पहले 5 मिनट आत्मचिंतन चाहिए, आत्मा को शरीर के भान से जागृत करो, नहीं तो शरीर के भान में हम सारा दिन देखे, शरीर को यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे अलग करना चाहिए, स्वतंत्र मैं अलग आत्मा हूं, ये शरीर अलग मैं आत्मा अलग, इसलिए चिंतन है उसके लिए, प्रश्न और जवाब चाहिए। नहीं तो कभी कभी देखा गया योग के अंदर क्या करते हैं, मन चलता है, बुद्धि खाली है, खाली बुद्धि भटकती है। इसलिए योग के अंदर कभी भी आप याद करने बैठे हो, याद देखना एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि दोनों काम लगना चाहिए। इसलिए एक ही भारत देश है, कभी भी हम एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, भारत के अंदर दोनों हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दोनों हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है, छोटी अंगुली को लगना चाहिए, बड़ी बड़ी अंगुली को लगना चाहिए, विधि पूर्वक हाथ जोड़ते हो तब नमस्ते है। तो यहां भी विधि पूर्वक मन और बुद्धि को जोड़ो, तो वो विधि कैसी है, ऐसे बैठे हमारा अच्छा योग्यता मन में अंदर अच्छे विचार आ गए, हाँ अच्छे विचार आ सकते हैं, लेकिन विचार आते आते बीच में बुद्धि ने अगर कुछ याद दिलाया तो योग में वियोग हो गया, है ना, रुक गए वहां इस। तो इसलिए दोनों को यहां से परमधाम तक ले जाने यात्रा पर चलना है, दोनों चक्के चलना चाहिए, नहीं तो एक चक्का चल रहा है साइकिल का, एक चल ही नहीं रहा है तो वहां ही खड़े हो, तो दोनों चलते हो तो मूवमेंट हो रहा है। तो ये मन बुद्धि कैसे चले, तो सिंपल तरीका है, जब भी आप योग में बैठो आंखें खोल के बैठो, इस राजयोग के अंदर कभी भी आंखें बंद नहीं करते हैं, दुनिया में जो इतने भी योग सिखाया है, राजयोग भी सिखाया है, हर जगह पर आंखें बंद करके बैठते हैं, और कहते हैं सभी बहुत अच्छा एकाग्रता होती है, लेकिन यहां एकाग्रता अलग है, आंखें खोल के बैठिए, आराम से फ्रेश जैसे चाहे बैठो, लेकिन अंदर वार्तालाप होना चाहिए। मन बुद्धि से बात करता है कि मैं कौन। बुद्धि के अंदर जो समझ मिली है, ज्ञान सुनने के बाद भी समझ में क्या आया वो बुद्धि जवाब देंगी, हां मैं ये हूं। तो कहेंगे नहीं, बुद्धि कहते नहीं मैं ये नहीं हूं, ठीक जवाब नहीं, फिर दोबारा पूछो मैं कौन। क्यों क्यों बुद्धि को पूछो? कभी कभी आप ही कहते हो मैं सच्चे दिल से बोलता हूं। ये दिल नहीं बोलता है, ये हार्ट नहीं बोलता है। दिल, आत्मा का दिल बुद्धि है, बुद्धि के अंदर समझ है। तो बुद्धि से पूछो कि मैं कौन, समझ से जवाब आएगा मैं ये हूं, तो वहां स्थिरता आती है। फिर दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है? फिर तीसरा पूछो, अगर मेरा रूप है तो मेरे गुण कौन से हैं? फिर चौथा पूछो, अगर मेरे ये गुण है तो मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं, मेरे कर्म क्या है? अगर यहां कुछ मैं कर्म कर रहा हूं तो मैं आया कहां से? ये पांच प्रश्नों, चार प्रश्नों का जवाब ढूंढा आपने, अर्थात आत्मा को शरीर के भान से अलग कर रहे हो। पांचवें प्रश्न पर आता है मैं कहां से आया, अब यात्रा शुरू हो गया। मैं यहां से नहीं आया, ये शरीर मट्टी में जो चीज बनती है वो खा के शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं यहां से नहीं आया, मैं ऊपर से आया। अब प्रश्न जब ऊपर क्या है, मन बुद्धि अभी चले, ऊपर क्या है? तो ज्ञान, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देंगे, ऊपर सूर्य चांद सितारों से ऊपर कहा था सूक्ष्मतन है, उसके ऊपर क्या है, कौन रहता है वहां? अपने आप मन बुद्धि, आंखें खुली है, ये चमड़ी के ग्लास है, खुले देख रहे हैं यहां, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। सामने कौन बैठे, इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर सिस्टम किया है कि योग कराने के लिए सामने कोई बैठता है, आप उसका चिंतन नहीं करते, उनको देख के चिंतन करते हो, हाँ उनको देखते रहते हो, देख भी रहे, दृष्टि भी ले रहे, लेकिन उनका चिंतन नहीं, हमारा चिंतन चल रहा है अंदर। तो ये अगर आदत डालते हो आप, तो रास्ते पर चलते हुए भी, किसी को देखते हुए भी उनका प्रभाव नहीं पड़े, चिंतन नहीं चलेगा, ये लक्ष्य है। कभी पूछते हैं कि क्यों देखना चाहिए, आंखें क्यों, आंखें बंद करने से हमारा योग अच्छा लगता है? बाबा का लक्ष्य ये है कि सामने जो योग करने बैठे हैं उनको आप देखते हो, दृष्टि भी लेते हो, लेकिन उनका चिंतन नहीं करते हो आप। तो ये आदत डालेंगे, उनको देखते हुए भी आपका मन और बुद्धि चल रही है, यात्रा कर रही है। तो रास्ते पर चलते हुए भी, ट्रेन में आमने सामने बैठे हो तो उनको देखते उनका विचार चलेगा, तो उनको देखते हुए भी, रास्ते पर चलते हुए भी, किसी पर नजर पड़ते हुए भी, देखते हुए भी आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं। क्यों? आदत है, अभ्यास है। आधा घंटा बैठ के रोज आप अभ्यास कर रहे हो, ये ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ये ट्रेनिंग आचरण कर्मों में भी आ जाएगा। तो लक्ष्य ये है, इसलिए आंखें खोल करके योग करो कि देखते हुए भी औरों को भी रास्ते पर चलते हुए देखते उसका प्रभाव नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप रोज आधा घंटा, बहुत नहीं चाहिए, ईट लेस डाइजेस्ट मोर कहते, थोड़ा सा खा लो, डाइजेस्ट करो, आधा घंटा बस योग में बैठो, लेकिन पूरी एका मन बुद्धि दोनों चलनी चाहिए। अगर मंजिल तक पहुंचता है तो बुद्धि स्वच्छ होती है, और प्रूफ जो आप मुरली सुनते हो देखना याद रहता है, आप एक दो दिन यहां हो करके देखना, फिर देखना अगर ज्ञान बुद्धि के अंदर है, योग की शक्ति भी है, संस्कार जागृत होंगे अवश्य, मन में संकल्प अवश्य आएंगे, तो ज्ञान और योग का प्रयोग करते हो, बार बार अपने आप को समझाते हो, नहीं ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, तब बाबा ने कहा युद्ध का मैदान है ये, पुराने संस्कार जागृत होंगे, तो उसको ये दवाई लगाते हो आप विधि पूर्वक, दवाई लगाते 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 संस्कार को आप शक्तिहीन बनाते हो, वीक करते हो, है ना। तो इस अगर अप्लाई नहीं है, योगी करते रहे, मुरली नोट करते रहे, ज्ञान है लेकिन परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, तो परिवर्तन की भी विधि जानना चाहिए, किस प्रकार ये स्व परिवर्तन के लिए अपने आप को जान लो। इसलिए योग में भी देखो आपको पता चलता है, अगर बुद्धि स्वच्छ होने के बाद आप बैठते हो ये मन बुद्धि चलता है, अगर मन के ऊपर संसार शरीर में संसार में चलते हुए समय किसी को देखा, अरे इन्होंने ऐसा क्यों, ये हैट क्यों पहना है, किसी को देखा अब योग में बैठते वो चित्र आएगा, तब पता चलेगा हमारे पर सारे दिन में बुद्धि के ऊपर कितने लोगों का प्रभाव है, तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। इसलिए कहा उसके लिए भी बहुत सुंदर एक तरीका है कि संसार में चलते हुए किसी को देखते हुए भी उनका चित्र आपके बुद्धि पर नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए भी बाबा ने बहुत सुंदर 2 साल से अभ्यास सुनाया, लेकिन उसका आप एक दिन करके देख लो, कल अपने आप देखो, बार बार सुनाना पड़ता है, अनाउंसमेंट करना पड़ता है, आए हो शांतिवन में लेकिन आवाज कितना है, डाइनिंग हॉल में जाको कितना आवाज है, लेकिन रस्ते पर देख लो शांत, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में चल सकते हैं। कहना नहीं, हम आए उसी लक्ष्य के लिए, लेकिन जैसे जैनी लोग पट्टी बांधते हैं ना मुंह पर, ऐसे जबरदस्ती तो नहीं होगा ना, तो इसलिए समझ चाहिए, उसके लिए अभ्यास। जैसे बच्चे देखो बहुत आवाज करते तो क्या करते, उनको खिलौना देते हैं तो कुछ देंगे वो उसमें बिजी रहेंगे, ऐसे हमें भी बाबा ने एक कर्म दिया है कि अपने आप मुंह को बंद करने के लिए, लेकिन मन को बंद नहीं करना चाहिए, मन से जरूर बोलना चाहिए। तो वो एक सेवा दे, अगर वो करेंगे आप एक दिन करके देख लो, कल अपने आप किसी का भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं, सवेरे से रात तक करो, और कल रात को आप सोएंगे तो देखना एक भी इधर उधर के गलत सपने आएंगे, साउंड स्लीप आएंगे, आपको गहरी नींद आ जाएंगे, देखना। नहीं तो स्वप्न रात को हमारी नींद कौन फिटाता है, अंदर भरे हुए संस्कार है वो उछलते हैं, कारण किसी को देखा डब्बा पुराना संस्कार जागृत हो गया, और किसी को देखा और खुल गया, बार बार पुराने नेगेटिव संस्कार को हम जागृत करते हैं, और वो जब सोते हो तब वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो जागृत ना हो पुराने संस्कार, साध्य है। एक दिन आप करके देख लो, सिंपल तरीका, बाबा ने इतना सहज सुनाया है जैसे, लेकिन इसका तरीका है कि सुनने से नहीं होगा, अभी सुन करके सवेरे उठते ही आप खटिया पर बैठते ही अपने आप से बात करो, बुद्धि के अंदर एक प्रोग्राम भरो कि मुझे आज सारे दिन में एक काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे आंखों के सामने कोई भी आता है उसको खाली हाथ भेजना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्यों, हम दाता के बच्चे हैं। आप कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो नहीं, हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो रास्ते पर चलते हुए जैसे भक्ति मार्ग में देखा, राम राम करते भी जाते, इधर उधर देखते भी रहते हैं, है ना, क्यों, ठीक था कि मुंह से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, और मुख पर भगवान का नाम रहे, ये लक्ष्य था। लेकिन अभी हमको बाबा ने मुख से पहले क्या है, मन, मन पहला, मन के बाद मुख में आवाज आता है, पहले मन में आता है, तो मन को ही पकड़ो, अगर मन शांत है, मन स्वच्छ है तो उसका प्रभाव बुद्धि पर है, तो दोनों स्वच्छ है तो कहां जाएंगे, चुंबक है खड़ा है, चुंबक अपने आप खींच लेगा, नहीं तो आप चुंबक के सामने देके एक सोने का टुकड़ा दे दो, खींचेगा, वो भी एक मेटल ही है, नहीं, चुंबक लोहे को ही खींचेगा, क्योंकि लोहे से बना हुआ है। तो हमारी बुद्धि इतनी अपवित्र अस्वच्छ है, कितने भी हीरे अच्छे अच्छे ज्ञान रतन दे दो कैसे खींचेगा वो, तो स्वच्छ नहीं है। तो स्वच्छ करने की विधि चाहिए, फिर अब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मन के ऊपर भी, तो एक काम करो, देखना बाबा की 8 शक्तियां हैं, एक ही दिन करके देख लो आप, रिजल्ट देख लो, अगर कुछ फायदा है, क्यों, हम औरों को फंसा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं फंसा सकते ना, तो हम जानते हैं, तो आप एक दिन अभ्यास करके देख लो इसका रिजल्ट क्या है, तो विश्वास होता है, विश्वास के बाद अपने आप करने लग जाएंगे, नहीं इससे ये फायदा है, ये करना ही चाहिए, अपने आप न चाहते भी होगा, लेकिन किया नहीं, अनुभव नहीं है तो नहीं होगा। तो इसके लिए एक ही काम, सिंपल, रस्ते पर चलते समय किसी पर नजर पड़ी, मन के अंदर ही, मुख से भी नहीं, बाबा इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो, और एक सेकंड के बाद बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे दो, इसको मिले या न मिले, लेकिन उसको, उस भाई को देखते मेरे मन में क्या आया, मुझे कौन याद आया, मेरे मन में क्या विचार आया, मुझे कुछ देना चाहिए। अगर शक्तियों का ये स्रोत मन में अगर ये चलता रहे तो दूसरे, अगर अब देखो मैं बोल रहा हूं तो खा नहीं सकता हूं, रिसीवर एंगेज है तो दूसरे वाइब्रेशंस कैसे पकड़ेगा। तो हमारा रिसीवर मन को एंगेज रख दो, बिजी रख दो। अगर आपको को ज्ञान का चिंतन करो तो नहीं हो सकता है इतना। तो ये कोई आया, जैसे हमको आदत है किसी को देखते ही थैंक यू कहते हो, ओम शांति कहते हो, आदत है, उसी आदत को और थोड़ी रिफाइन करो। किसी को देखते ही मन के द्वारा शक्तियों का दान दे दो तो वाइब्रेशंस फैलते हैं, संकल्प पहुंचता है। लेकिन भले देरी से पहुंचे, कितना उसका अगर स्वच्छ होता जाएगा उतना पावर आएगा। तो ये अभ्यास चाहिए। अगर ये दो अभ्यास करते, एक बैठकर बुद्धि को स्वच्छ करते हो, चलते फिरते मन के ऊपर प्रभाव नहीं आना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, तो मन को भी सेफ रखते हो। अगर ये दोनों सेफ है, स्वच्छ है, कल साबुन लगा के घिसने की जरूरत नहीं है, कपड़े स्वच्छ है, पानी में डालो निकाल दो, तो जब कल ज्ञान सुनते हो तो मुरली के पॉइंट याद रहेगा। तो कितने भी पुराने संस्कार मन में आते हैं तो उसके ऊपर आप प्रभाव प्रयोग करते हो, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कल बाबा ने कहा था, ऐसा नहीं। कुछ देखने के बाद, कुछ सुनने के बाद आता है, जागृत होता है, तो उसके ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं, तब परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन की डिटेल। नहीं तो दूसरों का परिवर्तन तो नहीं हो सकता है, ये कभी सोचना नहीं। अगर वो सोचते हो तो मन के अंदर बहुत व्यर्थ विचार चलता है, इनको ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहे शब्द याद रखना स्व परिवर्तन, ठीक है। तो ये याद रखना दो बातें, स्व परिवर्तन के लिए क्या क्या चाहिए। ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले।